वचन। नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है। लंबा है सफर अपना, बढ़ते ही जाना है ताज रखा फिर, उस ताज को पाना है, उस ताज को पाना है, अब कस लो कमर अपनी, शैतान से लड़ाई वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी। दुनिया ये नहीं अपनी, सब कुछ बेगाना है, कुछ रोज यहाँ रहना फिर छोड़ के जाना है, फिर छोड़ के जाना है, रहबर वो हमारा पहचान पुरानी है, वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी। दुख दर्द बहुत इसमें है, ज़ुल्मो सितम सहना, हमदम वो हमारा है, रंजीदा नहीं रहना, रंजीदा नहीं रहना, आता है कोई देखो ईशु की सवारी है, वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यर्मिया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में देखा है कि परमेश्वर अपने दास यर्मिया को अपने लोगों के बीच में वचन बांटने के लिए चुना। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और सच्चे वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते हैं, आप हमें सिखाते और समझाते हैं। आज जब हम फिर से आपके वचन में से, यर्मिया की पुस्तक में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जहां कहीं भी हैं, आप उनकी आत्मिक आंखों को, उनके कानों को, उनके हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि प्रभु आपका वचन उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। यदि कोई निराश है, चिंतित और परेशान है या बीमार अवस्था में है, पिताजी आप उन्हें वचन के द्वारा से छुएं, बोले और बातचीत करें। हम सबके साथ हो और हमारे सहायक हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम यर्मिया की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, जिसका विषय है यहूदा पर दो गुना दोषारोपण। पहले अध्याय में हमने यर्मिया की बुलाहट और भेजा जाना देखा। परमेश्वर ने उसे युवावस्था में ही बुला लिया था, 20 वर्ष की आयु में। उस समय योशियाह राजा भी 21 वर्ष या 22 वर्ष की आयु का था। इस प्रकार इसराइल देश में दो युवक थे, एक राजा और एक भविष्यद्वक्ता। यर्मिया स्पष्ट कहता है कि वह इस बुलाहट के ना तो योग्य था और ना ही सक्षम था। वह सोचता था कि वह भविष्यद्वक्ता के पद के योग्य नहीं था और उसने इससे बचने का भी बहाना बनाया और उपाय निकाला। परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके मुंह में अपने वचन डालेगा, अतः उसकी वाणी में परमेश्वर के शब्द होंगे। अध्याय 2 से अध्याय 6 यर्मिया के सेवाकाल के प्रथम 5 वर्षों का वृतांत है। उसने योशियाह के राज्य काल के 13वें वर्ष में भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की थी। ये संदेश उन 5 वर्षों के हैं जिन वर्षों के बाद मंदिर में मूसा की व्यवस्था पाई गई थी। अध्याय 7 से 9 के संदेश मंदिर के शोधन तथा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक के पाए जाने के विषय में है, जो योशियाह के राज्य काल के 18वें वर्ष की घटना है, और अध्याय 10 से 12 में व्यवस्था की पुस्तक के पाए जाने के बाद के संदेश हैं। हम देखेंगे कि जागृति ऊपरी परिवर्तन ही था, क्योंकि परमेश्वर के वचन का उचित ध्यान नहीं दिया गया था। मेरे प्रियो, हमें स्मरण रखना है कि जब तक परमेश्वर के वचन पर उचित ध्यान ना दिया जाए तो सच्ची जागृति नहीं आएगी। इतिहास के इस युग के विषय अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें भविष्यवाणी की पुस्तकों के साथ साथ इतिहास की पुस्तकों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। अतः हम यर्मिया के संदेश को इतिहास में यथा समय संयोजित करने के लिए दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 34 भी पढ़ेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब योशियाह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 21 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर। मेरे मित्रों, यहाँ एक आश्चर्यजनक राजा है जो इसराइल में उस समय राज्य कर रहा था जब यहूदा की संध्या हो रही थी। आगे पद 3 में लिखा है, वह लड़का ही था, अर्थात उसको राजगद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी नहीं हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा और 12वें वर्ष में ऊंचे स्थानों और अशेरा नामक मूर्तों को और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। यशाया की सेवा के प्रथम 5 वर्ष इसी समय के हैं। बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली और अशेरा नामक और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला और उनकी बुकनी उसने उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे और उनके पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। यों उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनश्शे, एप्रेम और शिमोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला और अशेरा नामक और खुदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला और इसराइल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका तब उसने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मशियाह और यहोआहाज के पुत्र इतिहास के लेखक यहोआह को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत करवाने के लिए भेज दिया। इसी समय शोधन और पुनरुद्वार के काम में हिल्कियाह नामक महायाजक ने मूसा की व्यवस्था की पुस्तक पाई। उस युग में शायद व्यवस्था की 2 ही प्रतियां थी, एक राजा के लिए और एक महायाजक के लिए। यशियाह के राजगद्दी पर बैठने से पूर्व यहूदा, यशियाह के दादा और पिता आमोन के अधर्मी शासन के अधीन पतन के गर्त में पहुंच गया था क्योंकि उनके मनों में न तो परमेश्वर के लिए और न ही उसके वचन के लिए श्रद्धा थी। अतः व्यवस्था की पुस्तक कूड़े में दबी पड़ी थी जो मंदिर में एकत्र हो रहा था। यर्मिया का पहला संदेश अध्याय 2 उसके 1 से 3 अध्याय के 5 पद तक है। इन्हीं अभक्तों के लिए था जिन्होंने परमेश्वर का त्याग कर दिया था। धर्मशास्त्र में ऐसा दूसरा अंश नहीं है जो सच्ची अंतर्वेदना और कोमलता में इसे पार कर जाए। यह परमेश्वर की उच्चारित सच्ची पुकार है क्योंकि उसकी प्रजा उसे भूल ही नहीं गई थी, उसका अपमान भी कर रही थी। उसका आग्रह और करुणा उसकी अपनी प्रजा के लिए भावी भयानक दिनों के साथ जुड़ी हुई है। मेरे मित्रों, यदि उनके मन परमेश्वर की ओर नहीं फिरे तो वे दंड पाएंगे। यह धर्मशास्त्र महान प्रबोधनों में से एक है। युवा राजा यशियाह वास्तव में परमेश्वर की खोज में था परंतु उसके पास परमेश्वर का लिखित वचन नहीं था, परंतु वह इतना अवश्य जानता था कि मूर्ति पूजा का अंत करना आवश्यक है। अब उसके पास एक युवा भविष्यद्वक्ता भी था जो उसके संकल्प में उसे प्रोत्साहन देता था। उन्होंने यहोवा को तुच्छ जाना। हम यर्मिया की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से 3 पद में पढ़ते हैं, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। इसराइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर एक अति उत्तम काम करता है। वह इसराइल से निवेदन करता है कि वह उस मनोहर समय को स्मरण करे जब वह उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया था। उस समय उसके संबंध उनके साथ कैसे थे, वे रात में आग के खंभे और दिन में बादल के पीछे कैसे चलते थे। उस भयानक जंगल में उन्होंने परमेश्वर को खोजा। परमेश्वर उन्हें वही याद दिला रहा है जो घटना घटी है। अब जब परमेश्वर ने उन्हें आशीषें दी और अच्छा स्थान दिया तो वे उससे दूर हो गए। होशे उत्तरी राज्य के लिए कहता था, अपने सुविधाजनक और परिष्कृत समाज में उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। जीवित परमेश्वर को छोड़ वे अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों को पूजने लगे, अर्थात प्रतिमाओं की आराधना और उपासना करने लगे। मुझे स्मरण आता है, वे तो परमेश्वर को भूल गए थे, परंतु परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें स्मरण कराता है। ओह, परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है। वह चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपनी गलती को महसूस करे और उससे फिर जाए, उसकी मन की पुकार को सुने। इसराइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि तुम उस समय कैसे थे? तुम मेरे थे, तुम मेरे पीछे चल रहे थे और मेरी अगुवाई में रहते थे, परंतु अब तुम मुझसे दूर क्यों हो? यर्मिया की पुस्तक 2:4 में लिखा है, हे याकूब के घराने, हे इसराइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यद्यपि उत्तरी राज्य के 10 गोत्र अश्शूरों द्वारा बंदी बनाकर ले जाए जा चुके थे, परंतु वे अब भी वहां थे। वे भटकते हुए इंग्लैंड, अमेरिका या भारत नहीं पहुंचे थे। वह याकूब के घराने और इसराइल के सब परिवारों को संबोधित करता है। प्रसंगवश वे आज भी वही हैं। यद्यपि वे उस समय अश्शूरों के दासत्व में थे, गुलामी में थे, परमेश्वर का संदेश उनके लिए भी था। यर्मिया की पुस्तक 2:5 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। निसंदेह यह धर्मशास्त्र का एक महान अंश है। देखिए परमेश्वर कैसे मधुर भाव में उनसे कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। इसी प्रकार आज भी परमेश्वर में ऐसी क्या बुराई है कि हम उसमें रुचि नहीं रखते हैं? हम उसकी सेवा क्यों नहीं करते? क्या परमेश्वर में अधर्म है? क्या परमेश्वर कोई अनुचित काम करता है? वह आपसे पूछ रहा है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई? यर्मिया के पुस्तक 2:6 में लिखा है, उन्होंने इतना भी न कहा जो हमें मिस्र देश में से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गढ़ों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश में से, जिससे होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहाँ है? मेरे मित्रों, आज वहां अधिक जन जाना नहीं चाहते हैं, वहां लोग जाते ही नहीं हैं। आज पर्यटक उसकी सीमा तक जाते हैं लेकिन आगे नहीं जाते। परमेश्वर ने अपने लोगों को उस भयानक जंगल में भी सुरक्षित रखा। 40 वर्ष तक उसने वहां उनकी सुधि ली, फिर भी ये लोग उसको नहीं खोजते हैं। यर्मिया की पुस्तक 2:7 में लिखा है, और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। आज हम पर्यावरण विभाग, विज्ञान और प्रदूषण मुक्ति के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है और निश्चय ही शोधन की आवश्यकता है। हमें बोध होना है कि नैतिक अशुद्धता और चरित्र का अवक्रमण तथा पतन किसी सीमा तक पहुंच गया है। प्रभु परमेश्वर यहाँ इसी बात का उल्लेख कर रहा है। उन्होंने परमेश्वर के देश को अशुद्ध कर दिया था। परमेश्वर की इच्छा थी कि वे उसके गवाह हों, परंतु वे अन्य जातियों की नाय वे भी भ्रष्ट हो चुके थे। यर्मिया की पुस्तक 2:8 में लिखा है, याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है, जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे, चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यद्वाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। परमेश्वर आत्मिक अगुओं को भी दोष देता है। ऐसा कोई देश नहीं जिसका पतन आत्मिक पतन से पूर्व हो। सबसे पहले आत्मिक त्याग होता है, उसके बाद नैतिक पतन और अंत में राजनीतिक अव्यवस्था। इसी प्रकार एक महान राष्ट्र इतिहास में विलोप होता है। लिखा है, याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। आज बाइबल शिक्षकों की और गवाहों की भरमार है। अयाजकीय वर्ग भी जो बाइबल के अज्ञानी हैं, मुझे यह कहते हुए खेद है परंतु सच है, वे वचन नहीं जानते तो परमेश्वर को भी नहीं जानेंगे। परमेश्वर को जानने के लिए वचन का ज्ञान का होना आवश्यक है। यर्मिया की पुस्तक 2:9 में लिखा है, इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है, मैं आज भी तुमसे याचना करता हूं। यह कैसी अद्भुत बात है। यर्मिया की पुस्तक 2:13 में लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। इसराइल ने दो बुराइयां की थी। सबसे पहले तो उन्होंने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था जो जीवन का जल है। दूसरा, उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। ओह, आज भी कितने मनुष्यों ने अपने लिए हौद बना लिए हैं, वे अपने ही हौद से जल पीते हैं, परंतु इसमें संदेह नहीं कि उन्हें संतोष प्राप्त नहीं होता है। करोड़पति अधिक की लालसा करते हैं, वह 1 करोड़ और कमाना चाहता है। इसी प्रकार यश कमाना है, संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है। परमेश्वर उनसे बातें करता जाता है। पहली बार वह कहता है कि वे पथ भ्रष्ट हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं, यर्मिया की पुस्तक 2:19 में लिखा हुआ है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है, तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, 3 में हम देखेंगे कि एक ही अध्याय में जितनी बार उनके पथ भ्रष्ट होने का उल्लेख किया गया है उतनी बार तो संपूर्ण बाइबल में नहीं किया गया है। अतः यह परमेश्वर की दृष्टि में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने अपने देवता बना लिए थे। शेष अध्याय में वह मूर्ति पूजा के विरुद्ध में विचार व्यक्त करता है और यह विवाद 3 तक चलता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वयं पढ़ें तो अधिक उचित होगा। पूरा का पूरा अंत तक पढ़ें। यर्मिया की भविष्यवाणी को समझने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके अपने लिए यह अति अद्भुत पुस्तक है। जी हाँ, यह एक अति रोचक बात है कि परमेश्वर का त्याग करने के बाद वह अपने लिए एक मूरत बना लेता है। मनुष्य जब अपने लिए मूरत की रचना करता है तब वह उसे अपनी इच्छा के अनुसार रूप और रंग देता है। वह ऐसा मूरत बनाता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। दूसरे शब्दों में यह मनुष्य के पुराने स्वभाव का मानसिक चित्रण है। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को भूल करके स्वयं ही अपने लिए मूरत बनाकर उसके निकटता में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मांग कर रहा है। मेरे प्रियो, यह क्या ही दुखद बात है कि हम उस महान सृष्टिकर्ता को भूलकर हम किसी और के पास आ रहे हैं। यहाँ पर इसराइलियों की दशा यही है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप अवश्य ही अगले अध्ययन में भी भाग लेंगे, ताकि आप उसके द्वारा आगे की बातों को सीख सकें और अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करें। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मुझको मसीह के आने का इंतजार है, मुझको मसीह के आने का इंतजार है। ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है, मुझको मसीह के आने का इंतजार है। जिसने दी हजार खुशियां, टूटे हुए दिलों को जिसने दी हजार खुशियां, उसके दीदार के लिए दिल बेकरार है, उसके दीदार के लिए दिल बेकरार। ख्यालों वो दिल के पास है, ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है, मुझको मसीह के आ